ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच, अथो सुरः प्रत्युपलब्धचेतसः परास्य पुंसः परयानुकम्पया जघ्नुर्भृशं शक्रशमीरणादयः तांस्तं रणेजैरभिसंघता पुरा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अथ तदनंतर सुरहा देवगण प्रत्युपलब्ध चेतसः उत्साह प्राप्त करके, परस्य पुंसः परम पुरुष की, परया अनुकंपया परा अनुकंपा से, जघ्नुः वध करने लगे, भृशाम अत्यधिक, शक्र समीरणादयः इंद्र और वायुदेव इत्यादि, तांस्तान अपने उन उन प्रतिद्वंदियों को, रणे रण में, यही ही जिनके द्वारा अभिसंघतः पराजित किए गए थे पूरा पहले, इस अध्याय के पूर्व यह वर्णन है कि असुरों की माया से देवगण सब विकल हो गए और अब वे परास्त के निकट पहुंच चुके थे, और इसके भी पहले अनेक युद्धों में बुरी तरह मारे गए थे, परास्त हुए थे दैत्यों से, परंतु इस देवासुर संग्राम में जब वे पराजित होने लगे तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, और भगवान परम पुरुष से परम ईश्वर प्रकट हुए श्री गरुड़ जी के ऊपर, और भगवान के प्रकट होते ही असुरों की माया विनष्ट हो गई, और कुछ असुरों ने भगवान पर आक्रमण किया तो भगवान ने उनका वध कर दिया। भगवान की इस अनुकंपा से उनके भक्त देवताओं का बड़ा उत्साह बढ़ा, और वे लोग अपने अपने प्रतिद्वंदियों को मारना प्रारंभ किए। इंद्र और बलि महाराज के युद्ध का वर्णन किया जा रहा है। भगवान इंद्र को अनेक बार अनेक बलवान असुरों से लड़ना पड़ा है। श्रीमद् भागवतम में उनके दो युद्ध की बहुत ही विशद कथा दी गई है, एक वृत्रासुर के साथ और दूसरा बलि महाराज के साथ। दोनों समय इंद्रदेव के साथ कुछ वार्ता होती है, यहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण वार्ता है। वृत्रासुर से वार्ता चल रही थी, इंद्रदेव वास्तव में वृत्रासुर का वध नहीं करना चाहते थे, परंतु समाज की आवश्यकता समझकर और भगवान की इच्छा उन्होंने वध किया। और वृत्रासुर मरने के पहले बहुत ही सुंदर वाणी बोल करके गए। इस संसार में सबसे बड़ा धन है किसी पुरुष की उच्चतम वाणी जो भगवान के गुणों से भरी हो, और तो सब कुछ नश्वर है, लेकिन भगवान के गुण नित्य हैं और उन गुणों का वर्णन इस संसार में सबसे बड़ा धन है। जैसे श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम भगवान के अनेक दिव्य गुणों से भरा हुआ ग्रंथ है, तथा श्रीमद् भगवद गीता वो तो साक्षात भगवान के मुख से ही निकली है। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिहिष्यता। और इसी तरह बहुत से आचार्यों ने, महान सौभाग्यशाली भक्तों ने इस जगत में अमर कथा दिया है, जैसे चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब ऐसे दिव्य शब्द हैं जो जुग जुग तक जिज्ञासुओं को भगवान से जोड़ते रहेंगे, भगवान का ज्ञान प्राप्त होता रहता है। इस युद्ध में, वर्तमान देवासु संग्राम में, वर्तमान से मेरा तात्पर्य जो उस समय हुआ था, देवराज इंद्र क्रुद्ध हुए बलि महाराज पर, क्योंकि बलि महाराज माया से युद्ध कर रहे थे और वे लगभग इंद्र को परास्त कर चुके थे, परंतु भगवान की कृपा से जब माया नष्ट हुई और इंद्र का उत्साह बढ़ा, तब वे बलि महाराज को बहुत ही बुरा बोलने लगे। यद्यपि उस प्रकार की बात बोलना उचित नहीं था उस युद्ध भूमि में उतने बड़े वीर के लिए, क्योंकि वे माया से युद्ध करे चाहे जैसे भी, जिसके पास जो शक्ति होती है वो युद्ध में करता ही है प्रकट। तो कहने लगे कि अरे मूढ़, तुम नट की तरह, जादूगर की तरह माया दिखा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग माया का ज्ञान रखने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही बिना पढ़ाई लिखाई के स्वर्ग के राजा बन गए हैं, हम स्वर्ग के राजा हैं, देवराज पद पर हैं, क्या ऐसे ही हो गए हैं क्या, माया दिखा रहे हो, बच्चा समझते हो। उस समय बोली कहाँ चली गई थी इंद्र की, जब माया प्रकट हुई थी उस समय तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन अब बहस बांधने लगे। कभी कभी देखा गया है कि कोई कुत्ता भाग रहा है किसी दूसरे कुत्ते के भय से, लेकिन अगर उस कुत्ते का मालिक उसके साथ हो जाए तो और वो भूकने लगता है, दौड़ता है। तो मालिक साथ में हो गए हैं तो इंद्र का बल बढ़ गया। तो मैं भगवान इंद्र के चरणों में क्षमा मांगता हूं, मैं उनको इस तरह से हीन नहीं समझ रहा हूं, लेकिन केवल उत्साह बढ़ने के विषय में मैं दृष्टांत दिया। स्वामी के साथ होने पर कुत्ता का बल बढ़ जाता है। अब इस तरह से वे बलि महाराज को कहने लगे, तुम माया से युद्ध करते हो, तुम कपटी हो, ये हो, और ये कभी आशा मत रखो कि तुमको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग प्राप्ति की आशा मन से निकाल दो, नहीं तो जहां हो वहां से भी नीचे गिरा दूंगा। इंद्र को सर्वदा यह चिंता रहती है कि उनका स्वर्ग कोई छीन न ले, और जबकि आप देखेंगे भागवत में अनेक कथाएं हैं जबकि स्वर्ग छोड़ देना पड़ा है इंद्र को, कभी युद्ध में हार कर, कभी स्वेच्छा से ही फेर में पड़ करके छोड़ चुके हैं। तो भगवान की व्यवस्था है, इस संसार में सबसे बड़ा पद है इंद्र का, उससे बड़ा पद है ब्रह्मा जी का, लेकिन ब्रह्मा जी के पद पर रहने वाले लोग तपस्या करते हैं, भोगों में नहीं रहते हैं। अतः यह कहिए कि सरकार में सबसे बड़ा पद ब्रह्मांड में इंद्र का है, तो उसको पाने के विषय में बहुत दाव पे चलता है। तो इंद्र को चिंता लगी रहती है, पहले तो अपनी सरकार को सुरक्षित रखना है किसी तरह से कि मैं इस पर इस पद पर बना रहो, इसके बाद विश्व का शासन करो। लेकिन इंद्र में या अन्य देवताओं में यह विशेषता है कि वे भगवान की इच्छा के अनुसार चलते हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। और दूसरा दल है जिसे दैत्य कहते हैं, ये भगवान कुछ नहीं समझते हैं, अपना बल, अपना विज्ञान, अपनी बुद्धि से ये उस पद को लेना चाहते हैं। ये भी केयर नहीं करते हैं भगवान ने यह नियम बनाया है, यह योग्यता हासिल कर लो तब वहां जा सकते हो। ये लोग कहते हैं नहीं, भगवान कौन है नियम बनाने वाला, हम जन्म लिए हैं, भोगेंगे दुनिया को, हमारी जैसे इच्छा करेगी वैसे करेंगे, और भगवान कोई है तो क्यों नहीं आ जाता है। तो बीच बीच में भगवान जन्म ले, अवतार लेकर हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे दैत्यों का वध करते रहते हैं, और फिर भी ये दैत्य इतने डल माइंड के हैं कि वे नहीं समझ पाते। अभी अभी इंद्र के साथ भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन फिर भी ये असुर समर्पण नहीं किए, अब मरने पर पड़े हुए हैं तो क्या कहेंगे। तो इंद्रदेव इस तरह से कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग की आशा छोड़ दो, अच्छा यही है कि युद्ध छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो देख रहे हो कि नहीं वज्र आज सर्वत्र यही कहानी मिलेगी कि तुम मारे गए। बलि महाराज को इस तरह कह रहे हैं, जैसे लगता है कि वज्र हाथ में दिखा देंगे तो बलि भाग जाएंगे युद्ध से, चाहे माफी मांग लेंगे, ऐसा वो होने वाले नहीं। वो भी प्रहलाद महाराज के पौत्र है, युद्ध का उनमें बहुत बड़ा उत्साह, और जीवन के इस सत्य से वो पूर्ण परिचित हैं कि कभी भी किसी की पराजय हो सकती है, ये जय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कीर्ति अपकीर्ति तो चलता ही रहता है, वो घबराने वाले नहीं थे। तो वे कहने लगे कि युद्ध में रहने वाले लोग कब जीतेंगे कब हारेंगे, हो सकता है कि हार रहे तब तक अंत में जीत जाए, ऐसा भी संभव है, या जो पक्ष जीत रहा है अंत में हार जाता है, सब देखा गया है। यह कीर्ति मिलती है, अपकीर्ति मिलती है, हम युद्ध में खड़े हैं और हम युद्ध में जय विजय कीर्ति अपकीर्ति का कारण काल को मानते हैं, अपने को नहीं। लेकिन मुझे आश्चर्य है देवराज इंद्र कि आप इतने बड़े पद पर होते हुए भी, देवताओं के गुरु होते हुए भी, आप कितना ज्ञानहीन हैं, आप अपने को कारण मानते हैं। अरे मैं स्वर्ग आया हूँ, सौ यज्ञ किया हूँ, इतना बड़े पद पर हूँ, तुमको नहीं चढ़ने दूंगा स्वर्ग में। अरे आपके करने से क्या होगा, काल जिस दिन चाहेगा तो आपको हटाकर अन्य किसी को कर सकता है। यह बहुत बड़ा आक्षेप था इंद्र पर। ठीक है, भगवान आपके पक्ष में है, आप विजयी हैं, लेकिन कुछ ज्ञान हासिल कीजिए, कुछ ज्ञान अर्जन कीजिए, कैसे बोला जाता है, कब कहाँ ज्ञान आपको नहीं है, और आपकी बात में कोई गहराई नहीं है, इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा। आपकी बात अनन्वित है, इसका कोई अर्थ नहीं। तदिदम काल रसनम जगत पश्यन्ति सूरयः, सूरयः इदम जगत काल रसनम पश्यन्ति, विद्वतगण समस्त जीवों को, इस जगत को काल के अधीन देखते हैं। काल जन्म देता है, काल बढ़ाता है, और काल ही मार देता है। कौन कब राजा होगा, कौन कब दरिद्र हो जाएगा, कुछ पता नहीं है देवराज इंद्र। मनुष्य को या जीव को चाहिए वो अपना कर्तव्य करे, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं है काल क्या करेगा। काल ही ईश्वर है इस जगत का। आप क्यों कह रहे हैं कि आप ऐसा किए हम स्वर्ग पर नहीं चढ़ने देंगे, नहीं करने देंगे, इस तरह से आपको नहीं बोलना चाहिए। अंत में उन्होंने कह दिया कि आप तो सोचे हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वे आपके जीवन पर शोक प्रकट करते हैं कि इंद्र कितना लिपटा हुआ है भोगों में, साधु सोचे ना, अच्छे लोग आप पर शोक प्रकट करते हैं, कहीं दुनिया में और लोगों की बात भी आप सुना कीजिए कि आपके विषय में लोग क्या कहते हैं। अपने मुख से तो आप अपनी बहुत बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके विषय में और लोग क्या कहते हैं जरा उसका भी पता लगाइए। रामचरितमानस में कहा गया है कि काक समान पाक रिपुकर्मी, जैसे कौआ डरता रहता है सबसे, वैसे इंद्र भगवान डरते रहते हैं हमारा कोई पद न ले ले, हमारा कोई पद न ले ले। नारद जी तपस्या कर रहे थे तो उसे डर गए कि नारद जी स्वर्ग चाहते हैं। बताइए, भगवान के भक्ति के रस में विभोर व्यक्ति स्वर्ग का राजा बनना चाहेगा? लेकिन वे भयभीत हो गए। तो हम आपकी बात को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जानते हैं सारा जगत काल के अधीन है। एक दृष्टि से देखा जाए तो असुरों को बड़ा ज्ञान है लेकिन भगवान में भक्ति नहीं। इतना बड़ा ज्ञान था तो फिर देवताओं से विरोध क्यों कर रहे हैं? भगवान के भक्तों से विरोध चल रहा है। जो कुछ भी हो, आचार्यगण कहते हैं कि समाज और परिवार के अनुरोध से बलि महाराज देवताओं का विरोध कर रहे थे। एक पारिवारिक कलह था, व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत रूप से तो बहुत उन्नत व्यक्ति थे, इस युद्ध में उनकी बातों से यह प्रकट हुआ। और दैत्यों का जो ये निर्णय है युद्ध के विषय में, उन्हें हमेशा धोखा में रहना पड़ा, हानि हुई उनकी। यह बहुत बड़ी शिक्षा है इस प्रसंग से। किसी भी मनुष्य को कोई क्रांतिकारी निर्णय लेने से पहले बहुत विचार करना चाहिए। असुर विचार नहीं किए, अपने को प्रमाण मान करके कोई कार्य चालू कर देते थे। जब भगवान अजित वासुकी की पूछ पकड़े, वहां पर असुरों ने अपनी बुद्धि लगाया। हमारे लोग सोचे कि नहीं, भगवान मुख पकड़े, भगवान अजित जब वासुकी का मुख पकड़े तो असुर कहते हैं हम क्यों पूछ पकड़ेंगे, क्या हम कम पढ़े लिखे हैं कि कोई हीन कुल के हैं कि हमने कोई अच्छा काम नहीं किया है, हम क्यों पकड़ेंगे पूछ। इसका पिछला भाग अशुद्ध अंग हम नहीं पकड़ेंगे। असुरों का यह विचार उन्हें फेलुअर बना दिया, वो ठीक निर्णय नहीं कर पाए। इसके कारण उन्हें वासुकी के मुख ज्वाला से जलना पड़ा, यावत समुद्र मंथन चला तो उनको जलना पड़ा। अच्छा, इसके बाद जब समुद्र मंथन से अमृत उत्पन्न हो गया तो दूसरी गलती इन लोगों ने यह किया कि अपनी बुद्धि लगाए कि बुद्धिमानी इसी में है कि अमृत का कलश लेकर भाग जाए। यह भी निर्णय उनका सरासर गलत हुआ, तो सफल नहीं हो। अच्छा, छीने तो तीसरी गलती हुई कि प्रत्येक असुर सोचता था मैं पहले पी जाऊं, छीन करके वो भी बांट कर पी गए होते तो चलो एक कोई कुछ तो उनको लाभ हुआ होता, लेकिन नहीं मैं पीऊंगा, वहां भी घाटा हुआ। चौथी सबसे बड़ी भूल उन लोगों ने यह किया कि मोहिनी के हाथ में दे दिया अमृत कलश। अपने समाज से बहुत बुद्धिमान थे, सब तरह से विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, वास्तव में लोक दृष्टि से लोग देवताओं से बढ़ करके हैं। लोग पढ़ाई लिखाई और विज्ञान में तो हमेशा ज्यादा रहते हैं असुर लोग, लेकिन इस प्रकार का निर्णय लेने में हमेशा गलती कर रहे हैं। चौथी गलती किया उन लोगों ने कि उस मोहिनी के अनजान स्त्री के हाथ में दे दिया अमृत कलश। पांचवी गलती किया कि उसकी शर्तों को भी स्वीकार कर लिया। वो इसी में बुद्धिमानी समझ रहे थे कि जो करेगी वही सही होगा। और छठी गलती वो लोग अब कर रहे हैं कि युद्ध का निर्णय कर लिए। जो हानि हुई सो हुई, उसी समय रुक गए होते तो कम से कम जीते जागते अपने घर लौटते, जो घाटा हुआ वही हुआ, लेकिन अपने बच्चों से मिलते, घर में सुखी रहते। बाद में देख युद्ध में ही इन्होंने अपना हित समझा, कलह करने में, झगड़ा करने में ही अपना हित समझा, और इसके चलते कितनी बड़ी पराजय इनकी हुई और किस तरह से प्राणों से हाथ धोए, इसका वर्णन किया जा रहा है। युद्ध का वर्णन तो चल रहा है। बलि महाराज आक्षेप किए इंद्र पर, और केवल आक्षेप ही नहीं किए, इत्याक्षिप्य विभुम वीरो नाराचर वीर मर्दन आकर्ण पूर्ण रहना आक्षेप राहतम। इस प्रकार की बातों से तो इंद्र आहत हो गए थे, सभा में उनकी बहुत भारी बेइज्जती हुई, बड़ा असम्मान हुआ जो बलि महाराज ने कहा। आक्षेप से तो आहत हो ही गए थे, बात से तो मार दिए गए, और बाण से भी मारने चालू किए बलि महाराज। गलती इधर से ही चालू हो रही है। कम से कम प्रतीक्षा करनी चाहिए कि इंद्र हम पर प्रहार करें तब हम करें, लेकिन असुर असुर होते हैं, बात से भी मारे अब बाण भी चला दिए। कैसे बाण चलाए? धनुष को कान तक खींचे, यहां तक आकर्ण, आकर्ण डोरी खींचने का अर्थ था कि बहुत कड़ा वार कर रहे, कई टन का वजन लेकर के वो बाण चलेगा इंद्र के पास। इन्होंने सोचा कि मार दूं मर जाए, समाप्त हो जाए, अथवा अपने कर्तव्य समझकर युद्ध में जो कुछ भी कर रहे थे। आकर्ण पूर्ण नाराचय, कान तक खींच करके धनुष की डोरी और बाण को चलाए। एवं निराकृतो देव वैरिणा तथ्यवादिना नामृश्य तद अधिक्षेपम तत्रा हत इव दीप। भगवान इंद्र यद्यपि देव शिरोमणि हैं, फिर भी अपने अपमान को सह नहीं सके थे, पूर्ण क्रोध में हो गए थे बलि की बात सुनकर के। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तथ्यवादिना, यद्यपि बलि महाराज तथ्य बोले थे, सत्य बोले थे, बहुत उच्च कोटि की बात बोले थे कि यह जगत काल के अधीन है, कोई कारण नहीं है, वास्तव में भगवान विष्णु सर्व कारण कारण है, जय पराजय में सम होना चाहिए, कीर्ति अपकीर्ति में सम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए, कब क्या होगा कुछ पता नहीं, इसको तथ्य कहते हैं, सत्य सिद्धांत बोले थे। पर थे वैरी, वैरी अपना दुश्मन शत्रु चाहे कितनी भी अच्छी बात बोले तो सहन नहीं होते, तथ्यवादी थे लेकिन वैरी थे, इसलिए इंद्रदेव सह नहीं पाए, न अमृत उसको बर्दाश्त नहीं किए। उस प्रकार से जैसे महावत के अंकुश को हाथी नहीं सह पाता है, विशाल हाथी पर मार दिया जाए अंकुश तो तिलमिला करके जल्दी जल्दी चलने लगता है, जैसे हाथी अंकुश के मार को नहीं सह पाता है, उस प्रकार इंद्र सह नहीं पाया। और जैं ही ये चलाना चाहते थे बाण, अभी रखे थे कान तक खींचे थे, उसी समय उन्होंने वज्र को चला दिया। वज्र का एक छोटा सा कण गिरता है, इतनी बड़ी कड़कड़ाहट के साथ आवाज होती है वर्षा काल में, आप लोग देखे हैं, उसको कहते हैं वज्रपात। वो डायरेक्ट वज्र नहीं है, उसकी एक हल्की किरण मात्र आकर के इतनी ध्वनि पैदा करती है और इतना भयानक वार होता है। तो उस वज्र को उन्होंने चला दिया, नहीं सह सकने के कारण भी चला दिए। अभी और अस्त्र शस्त्र इनके पास थे लेकिन क्रोध में चला। प्राहरत कुलिशम तस्मा अमोघम पर मर्दन सयानो न्यपतत भूमो छीन पक्ष। तो वह वज्र कैसा है? अमोघम। उसका प्रहार व्यर्थ नहीं जा सकता, पर मर्दन, शत्रुओं का मर्दन करने वाले इंद्र चला दिए। इंद्रदेव केवल इसी बार किसी शत्रु को मार दें ऐसी बात नहीं, उनका जीवन युद्ध में ही बीतता है। स्वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अनेक युद्ध करना पड़ता है, और इस पृथ्वी पर भी 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करना पड़ता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने में भी बहुत युद्ध होता है। यह पृथ्वी पर जो राजा इस तरह से यज्ञ करता है तो यहां भी युद्ध करना पड़ता है, और स्वर्ग में जाने पर तो दैत्यों से और किससे किससे हमेशा भय रहता है। दैत्य हमेशा स्वर्ग छीनने के फेर में रहते हैं, अतः युद्ध होता ही रहता है। इसलिए पर मर्दना कहा गया है इंद्रदेव को, सदा इस विषय में एक्सपर्ट है शत्रुओं को मारने में। तो चला दिए वज्र और शयानो न्यपतत भूमौ, और बलि महाराज मर गए। और शयानो न्यपतत, मरे हुए शरीर बिखरा हुआ, हाथ पैर फैला हुआ गिरे विमान के साथ। तो विमान के साथ जब वे गिरे तो ऐसा लगा कि कोई पर्वत का शिखर धड़ाम से गिरा हो नीचे। ये क्षण भर में सारा दृश्य बदल गया है। देवता लोग हार रहे थे, लेकिन अब असुर बिल्कुल हारने की ओर चल दिए, अब वे हारने लगे। छीन पक्ष इव अचल, अचल पर्वत। एक बार इंद्रदेव ने मारा था पर्वतों पर वज्र से, तो उनके भी पंख कट गए थे और जहां तहां धड़ाम धड़ाम गिरे थे। एक ऋषि ने वरदान दे दिया था पर्वतों को उड़ने के लिए, लोग सेवा किए ऋषि की और ऋषि प्रसन्न हो गए। तो इन्होंने कहा, ऋषि ने कहा कि वर मांगो, तो पर्वतों ने वर मांगा कि हम एक जगह बैठे बैठे उब गए हैं, हमको पंख मिल जाता तो हम भी उड़ते आकाश में फ्लाई करते, पर्वत सब पंख पा गए। लेकिन ये इतने दुष्ट थे पर्वत कि कहीं भी किसी नगर पर आकर के बैठ जाते थे, गांव पर बैठ जाते थे, कई बार क्षति हुई, लोग मर गए। तब अंत में सारे संसार ने मिल करके भगवान इंद्र से प्रार्थना किया कि इनके पंख काटिए और जहां तहां इनको अचल बनाइए, नहीं तो जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। तब भगवान इंद्र इसी वज्र से पर्वतों के पंख काटे थे, तो पर्वत के पंख भी एक पर्वत जैसे ही थे। तो पंख गिरे और पर्वत गिरे जहां तहां धड़ाम से, जितनी आवाज उस समय पर्वत के गिरने से हुई थी उसी तरह से धमाक से बलि महाराज गिरे उस विमान के साथ। श्रील सुखदेव गोस्वामी पर्वतों का गिरना आंख से देखे थे, तो उस आवाज को, उस पृथ्वी के दलदल को, क्या कहते हैं इसको, दलकना पर्वतों के गिरने से, तो उस तरह से उस समय हुआ जब बलि महाराज विमान के साथ गिराए गए। अपने सखा को, बलि महाराज को गिरा हुआ देखकर, मरा हुआ देखकर के उनका एक मित्र था जम्भ, तो जम्भ दौड़ा इंद्र को मारने के लिए। और मारने के लिए क्या दौड़ा, अब सब मरने के लिए दौड़ रहे हैं। जब ये देखे कि बलि मारे गए तो कुशलता इसमें थी कि अब छोड़कर युद्ध भाग जाए, यही होता ना कि अब कीर्ति मिलती, लेकिन जान तो बच जाती ना। लेकिन अब ये सोचा कि मैं इंद्र को मार दूंगा, तो अपने मरे हुए मित्र के अनिर्णय के लिए, ऋण उतारने के लिए आगे चला इंद्र को मारने। इस मूर्ख को पता नहीं है कि इंद्र के पक्ष में भगवान है, अब उनको काल भी नहीं मार सकता है, चला मारने के लिए। वह सिंह पर सवार था और भगवान इंद्र हाथी पर सवार था। तो उसके मन में आया कि सिंह तो ऐसे ही हाथी से बलवान होता है, तो जैसे सिंह हाथी से बलवान होता है वैसे मैं इंद्र से बलवान हूं। सवारी से ही तुलना करने लगा, पर उसको पता नहीं था कि ऐरावत हाथी है, ये सामान्य हाथी नहीं। आया लड़ने के लिए, उसके मन में यही विचार हो रहा था कि मेरे मित्र ने मेरे साथ मित्रता किया, हाय हाय आज मर गया, तो मरे हुए मित्र का ऋण उतार दो, मतलब हमारे मित्र को बलि को जो मारा है उस इंद्र को आज मार दूंगा तो हमारा ऋण उतर जाएगा, उऋण हो जाऊंगा। तो सिंह वाह आसाध्य गदा मुद्यम रंगसा जत्रावतार्य चक्रम गजम च सुमहाबल। सिंह पर सवारी किया हुआ आया और हाथ में गदा लिया था और गदा को बड़े वेग से उसने शक्र पर मारा, इंद्र पर मारा और हाथी पर भी बहुत जोर से मारा। इतना जोर से मारा हाथी को कि वह ऐरावत हाथी तुरंत ही घुटना टेक दिया। बहुत बलवान हाथी है इंद्र का, लेकिन गदा का प्रहार इतना वेग से था कि गाज उसका मुख फट गया और घुटने टेक दिया। आवाज करते हैं, गदा प्रहार व्यथितो भृशम विह्वलितो गज जानुभ्याम धरणी में स्पृष्ट कसमलम परमम जयो। तो हाथी तो बेकार हो गया, बेकार मतलब कुछ देर के लिए वो सवारी ढो नहीं सकता था। कसमलम का अर्थ मूर्छा आ गई ऐरावत को। तब तक तुरंत ही युद्ध देखने वाले मातली जो इंद्र के सारथी हैं और जिस रथ में 1000 घोड़े लगते हैं, इंद्र का ऐसा रथ है, तो उसको लेकर के मातली जी तैयार थे पहले से। जब ही हाथी बेकार हुआ, हाथी मूर्छित हो गया, तब तक मातली रथ को लेकर उपस्थित हो गए आकाश में। तो इंद्रदेव हाथी छोड़ करके उस पर चढ़ गए। मातली के इस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा किया वहां उन लोगों ने जो भी थे। स्वामी को संकट में देख करके, रथी को संकट में देखकर सारथी इतना शीघ्र रथ उपस्थित कर दिया कि सब लोग प्रशंसा करने लगे, जय हो मातली की बुद्धि को धन्य है, इस प्रकार की तत्परता चाहिए। इसको कहते हैं रुख देख करके सेवा करना। वो सेवक है मातली, सारथी है, नहीं तो रथ उपस्थित कर दिए। तस्त तत् पूजयन कर्म जंतुर दानव सप्तम। जंतुकार से सारथी के इस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा की है, यहां तक कि वह भी प्रशंसा किया, जम्भ भी प्रशंसा किया कि वाह रे सारथी वाह धन्यवाद। युद्ध चल रहा था लेकिन वीरता का काम कोई करे तो उसको उसकी प्रशंसा भी की जाती थी। इसके बाद सूल उठाया, जलता हुआ सूल लेकर मातली को मारा। मातली की प्रशंसा भी किया और लेकर के सूल मातली को मारा, लेकिन इंद्र जब वो चला रहा था, सूल चलाना चाहता था मातली के, तब तक भगवान इंद्र उसी समय उसके मस्तक को वज्र से काट दिया और सूल हाथ में ही रह गया, गिर गया धड़ाम से। ये तो ऋण उतार दिया पूरा पूरा बलि महाराज को। ये युद्ध में गया जम्भासुर, जम्भ से नाम। जम्भम श्रुत्वा हतम तस्य ज्ञातयो नारदादृशे नमुचिश्च बलहता का तत्रा पेतुस्त्वरान्वितः। तो जब जम्भ के वध की कथा नारद जी के मुख से उसके परिवार वालों ने सुना तो वे सब बहुत क्रोधित थे। नारद जी चाहते थे कि ये लोग भी ऋण उतार दें अपने परिवार का मित्र। नारद जी ने जाकर कहा अरे जम्भ मर गया, इंद्र ने वध कर दिया, तुम लोग ऐसे जीवित रहकर क्या करोगे, जाओ 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 युद्ध करो। तब ये सब जूते कौन कौन थे, नमुची पाक और बॉल। ये पाक हो सकता है पाक का रिप्रेजेंटेटिव रहा, ये पाक बॉल और नमुची ये सब आए युद्ध करने के लिए, सब इंद्र को मारने के लिए एक साथ आक्रमण किए। यह प्रश्न हो सकता है कि नारद जी को इसकी क्या जरूरत है कि वे खबर दिए इन लोगों को। नारद जी जानते थे कि ये लोग मारे जाएंगे इंद्र के हाथ से, यही खबर देने का मुख्य कारण था। उनकी इच्छा थी कि ये सब भी संसार को डिस्टर्ब करने वाले मारे जाएं। तो पहले तो इंद्र को वचन से मारे, गाली देने लगे चारों तरफ से, बचो भी परुषय इंद्र मर्द अंतो से मर्मसु। ये असुर लोग गाली देने में एक्सपर्ट होते हैं, कोई भी गाली देने लगे। अब उनके परिवार के हेड को मारे थे, संबंधी को मारे थे इंद्र, इसीलिए खूब गाली दे रहे थे। तो पहले तो गाली दिए, साप दिए कई तरह से, और इसके बाद चारों तरफ से एक साथ अपनी सेना द्वारा बाण वर्षा करने लगे। सरय रवा किरण मेघा धाराभी रिव पर बतन, इतना बाण वर्षा, इतना बाण वर्षा एक साथ की लगता था कि वर्षा मेघ धारा बरसा रहे हैं पर्वत पर। कभी कभी पर्वत छिप जाता है वर्षा की धारा में, बूंदों से दिखाई नहीं पड़ता है पर्वत, इतनी वर्षा होती है। तो इतनी बाण वर्षा चल रही थी कि इंद्र दिखाई नहीं दे रहे थे। परंतु उपमा देखिए, उनकी बाण वर्षा वर्षा के समान है और इंद्रदेव पर्वत के समान है। वर्षा से पर्वत का क्या होगा, कितना भी बाण बरसा, वर्षा कुछ भी वो पर्वत छिप भले जाए, अंतरहित हो जाए, कवर्ड हो जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन कुछ उसकी हानि नहीं होती। तो बाण वर्षा किस तरह की है, मुख्य मुख्य बाण बता रहे हैं। बल नामक असुर ने युद्ध भूमि में स्थिति को संभालते हुए इंद्र के 1000 घोड़ों को उतने ही बाणों से घायल कर दिया। हरिम 10 शतान आजव हरियस्वस्थ बलम बलह सरय तावद्भीर अर्दया मास जुगपद लघुहस्तों। बड़ा फुर्तीला था, अकेले उसने इंद्र के 1000 घोड़ों पर 1000 बाण चलाया। वो तो घोड़ों को मारा है। और शताभ्यम मातलिम पाको रथम सावयम पृथक सकृत संधान मोक्षण तदद्भुत मभूत रणे। और पाक इसने 200 बाण चलाया मातली पर, 200 बाण सब मिलाकर के चलाया, 200 बाण चला, लेकिन 200 बाण में एक ही साथ हुए बाण मातली पर, रथ पर, ध्वज पर, सब पर लगे। घोड़ों पर तो पाक कौन चलाया, बल चलाया था, बल एक राक्षस का नाम। तो बल घोड़ों को मारा और पाक सारथी को, रथ को तोड़ना चाहा और ध्वज को, एक बार में ही, अलग अलग बाण नहीं चलाया, एक ही बार निशाना लेकर चलाया सब अलग अलग लगे। तो इस कर्म की सब लोग प्रशंसा किए, ये अद्भुत कर्म किया इसने। और नमुची इंद्र पर आक्रमण किया और उन्हें 15 सिंहले पंख वाले बाणों से घायल कर दिया। तो इंद्र पर प्रहार किया नमुची ने, रथ पर, ध्वज पर और मातली पर पाक ने प्रहार किया, और बल ने घोड़ों पर एक बार में लोग प्रहार किए एक साथ। ये अद्भुत बातें हो रही थी। अहत व्य नदत संख्य सत्व एव त्वेद। और नमुची बाण चलाए तो बाण चला करके इतना जोर से गरजा कि लगा कि जलधर मेघ गरज रहा। मेघ गरजते हैं जल वाले तो बहुत दूर में आवाज उनकी जाती है, सूखे मेघ की आवाज बहुत दूर नहीं जाती। लेकिन सत्तोय इव तोयद, सत्तोय तोयद जैसे गरजता है वैसे गरज जोश, और सब ओर से और भी बाण वर्षा किए, और अब भगवान इंद्र रथ के साथ ही उसी तरह से घिर गए जैसे वर्षा काल में बादलों से सूरज ढक जाता है, सूरज दिखाई नहीं देता। और जब इंद्र दिखाई नहीं दियो तो देव सेना में हाय हाय हाहाकार मच गया, इंद्र तो मारे गए, इंद्र मारे गए, इंद्र मारे गए। अब सब लोग जहां तहां जो लड़ रहे थे वे हाहाकार करने लगे। अलक्षयंत स्तमती व बिहवला विचुक्र सुर देव गणा सहानुगा अनायका शत्रु बलेन निर्जिता बणिक पथा भिन्न नव जथारणवे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे समुद्र में कोई बणिक समुदाय यात्रा कर रहा हो और बीच समुद्र में ही वो जहाज और नौका फट जाए और उस पर रहने वाले बणिक समुदाय पूरा परिवार हाय हाय करने लगे, अब तो मरेंगे, बचाओ बचाओ, उस तरह से देवता सब रोने लगे कि हाय हमारा नायक मारा गया, हमारा रक्षक मारा गया, ये हुआ वो हुआ। मारे नहीं गए थे इंद्र, दिखाई नहीं पड़ रहे थे इसलिए इन लोगों ने सोचा कि वो तो मारे गए। उस समय देवताओं के हाहाकार को सुनकर भगवान इंद्र प्रकट हुए, बाणों के पंजर से वे उस प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार पृथ्वी आकाश और दसों दिशाओं को जगमग करता हुआ सूर्य उदित होता है, और रथ के साथ ध्वज के साथ सारथी के साथ कुछ भी क्षति नहीं हुई थी। भगवान इंद्र का झंडा भी नहीं कटा था, घोड़े नहीं मरे थे, रथ का चक्का आदि ध्वस्त नहीं हुआ था, और उन पर भी कोई खरो क्षति छत विछत नहीं हुए थे। वे प्रकट हुए। निरीक्ष प्रतिनाम देव परय रभ्यर्जिताम रणे उदयच्छत रिपुम हंतुम वज्रम वज्र धरोजत। उन्होंने देखा कि उनकी सारी सेना दैत्यों के द्वारा बुरी तरह से पराजित हो रही है, तो वे तुरंत रथ पर खड़े हुए और वज्र ले लिए हाथ में। सत्यनय वस्त्र धारण सिरसी बल पाकर, अस्त्र धार वाले उस वज्र से उन्होंने एक ही समय में बल और पाक दोनों का मस्तक काट लिया एक प्रहार में। दो बार नहीं चलाए, एक बार इतना वेग से चलाए कि दोनों का मस्तक काटा। ज्ञातीनाम पश्यताम राजन जहार जनयन भयम्। और उनके परिवार के लोग जो सैनिक थे वो सब देख रहे थे, और उनके देखते देखते इंद्रदेव ने मस्तक काट लिया बल और पाक। तो इसका अर्थ है कि परिवार वालों को भय हो गया, वो तो चले भाग, जो और छोटे छोटे लोग थे ये लोग आए थे बदला चुकाने के लिए, लेकिन सब भाग, और रह गया नमुची। तो नमुची बल और पाक जंभ और बलि सबके वध को देखा, तो खास करके बल और पाक के वध को देखकर वह क्रोध शोक से अन्वित हो गया। शोक अमर्ष रुषान्वित, शोक का अर्थ है अपने बंधुओं के मरने का शोक दुख, और अमर्ष का अर्थ है शत्रु के उत्कर्ष को सह न सकना, और रुषा का अर्थ है क्रोध से। शोक अमर्ष और क्रोध तीनों आया उसके हृदय में, और उसने निश्चय कर लिया कि अब इंद्र का वध कर देना है। ये देखिए इसकी इसका अविवेक, अरे क्रोध करने से और शोक करने से वो इंद्र को थोड़े मार देगा। जब देख रहा है कि यह इंद्र विश्वजयी हो रहा है, इतने बड़े बड़े वीरों को मार दिया, तो अब दुस्साहस नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो मरने का समय इसका आया था, परंतु ये अद्भुत ढंग से मारा गया है। इसकी कथा रहे तो इंद्रम जिघांसु निरपत चकार परम दमम, अपने पास जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति लगा दिया इंद्र का वध करने में। उसके पास एक सूल था। वह सूल सोने से भूषित था और उस सूल में कई घंटे लगाए गए थे बड़े बड़े, चलता था तो आवाज करता हुआ चलता था, घंटा बद्ध हेम भूषण। उसको पकड़ करके और कहा कि बस तुम मर गए, समझो निश्चित तुम मर गए, और चलाया बहुत जोर से, देवराज इंद्र पर चलाया। लेकिन जब आकाश में सूल आ रहा था उसी समय भगवान इंद्र ने उसको बाणों से काट दिया। धनुष बाण भी लिए थे इंद्रदेव, तो धनुष बाण चला करके बाणों से उसके सूल को काट दिए, और क्रोध में फिर उन्होंने अपना वज्र लिया और उसके मस्तक पर चलाया बहुत जोर से, बहुत वेग से मस्तक पर चलाया वज्र, लेकिन वज्र ऐसे घूम करके और नीचे गिर गया, चमड़े पर लगा, उसके त्वक पर लगा, लेकिन त्वक को क्षत भी नहीं कर सका, थोड़ा भी नहीं कटा उसका सिर। तो इंद्रदेव तो बहुत भयभीत हो गया और विचार संकट में पड़ गए, ये क्या हुआ, जिस वज्र से मैंने वृत्रासुर जैसे विराट दैत्य का वध किया ये क्या हो गया, और अब वे शत्रु के सामने वज्र उठाने में भी लज्जा करने लगे। इसी वज्र पर सहारा भरोसा था उनका, अब बहुत भय हो गया और आश्चर्य में पड़ गए क्या होगा। अरे मस्तक नहीं कटता, कम से कम कुछ तो काट देता, चर्म भी काट दिया होता तब भी कुछ भरोसा रहता। नतस ही त्वच मपि वज्र ऊर्जितो विभेद यह सुरपतिनोज सेरित तदद्भुतम परम परमति वीर्य वृत्र भी तिरस्कृतो नमुची शिरो धरत त्वच। जब उसके त्वक को भी, वो भी गर्दन के सिरोधर के त्वक को भी नहीं काट सका, ये बहुत कोमल त्वक होता है यहाँ, और उसको भी वज्र नहीं काट सका पूरे वेग से चलाए जाने के बाद, तो सुरपति तो भयभीत हो गए। वही वज्र सोचने लगे कि जो वृत्रासुर जैसे कठोर शरीर को काट दिया और वह नमुची के सिरोधर से तिरस्कृत हो गया, इस प्रकार विचार करने लगे। अब उस शत्रु से इंद्र भयभीत हो गए और शोक छा गया और लगे कहने किमिदम दैव जोगेनम भूतम लोक विमोहनम, क्या हो गया, क्यों मेरा ये विश्व प्रसिद्ध अस्त्र विफल हो रहा है, क्या हो गया, कैसे हो गया। जिस पर्वत से, जिस वज्र से मैंने पर्वतों के पंख काटे थे, जो पृथ्वी पर गिरते थे पर्वत, उनके पंख काटे थे, आज वज्र में क्या हो गया, क्या इतने ही दिन के लिए इसमें शक्ति भरी गई थी। यह त्वष्टा के तप और सार में हड्डी से बनाया गया, नहीं जिस वज्र के द्वारा मैं त्वाष्ट्र का वध किया, वृत्रासुर का वध किया, और भी यहां पर बल सहित अनेक राक्षसों का मैंने वध किया, अनेक युद्ध में वध किया, लेकिन आज यह वज्र नमुची के सिरोधर के कंठ के त्वक को भी नहीं काट पाया, अब मैं इस वज्र को नहीं धारण करूंगा। वे समझ गए कि बस इतने ही दिन तक इसमें तेज था, शक्ति थी, अब नहीं धारण करूंगा। स्वयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्ते सुरिल्पके नाहम तदा ददे दंडम ब्रह्म तेजो प्यकारण। यद्यपि इसमें ब्रह्म तेज है, दधीचि मुनि की तपस्या है, लेकिन अब सब व्यर्थ हो गया, अब नहीं लूंगा। यदि मैं वज्र के भरोसे पर रहूंगा तो मैं निश्चित मारा जाऊंगा, अब मैं क्या करूं, इसको मारने का, इसके वध का क्या उपाय करूं। देवराज इंद्र को कुछ भी सूझ नहीं रहा था क्या करूं, जब वज्र विफल हो गया तो दूसरे अस्त्र चलाने का साहस नहीं हो रहा था। विषाद कर रहे थे देवराज इंद्र, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवराज, मैंने इसको वर दिया है कि यह किसी शुष्क वस्तु से या आर्द्र वस्तु से नहीं मरेगा। अब आप उपाय सोचिए इसको मारने का। तो वज्र शुष्क वस्तु है और विष आदि आर्द्र वस्तु है, ये आर्द्र से या शुष्क से नहीं मरेगा, ये वर दिया गया था। मयास्मै जद वरो दत्तो मृत्युर नैवाद्र शुष्कयो अतोन्यश्चिंत नियस्ते उपायो मघवन जी को। अतः हे मघवन, हे इंद्र, आप कोई दूसरा उपाय सोचिए। ऐसा उपाय सोचिए कि जो वस्तु आर्द्र न हो, गीली न हो और सुखी न हो, शुष्क न हो आर्द्र न हो, उस वस्तु से मारने का प्रयास कीजिए। तो भगवान इंद्र तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं। समुद्र के किनारे युद्ध हो ही रहा था, उन्होंने विचार किया कि ये जो समुद्र का फेन है, ये ऊपर का न सूखा है न गीला है, जरा इससे देखें क्या होता है। तो उन्होंने वो फेन लेकर के उसके ऊपर फेंका, वो धड़ाम से गिरा मर गए। ये देखिए संसार में ईश्वर की करामात, जो वज्र से नहीं मरा वो उतना कोमल फेन से मर गया। समय पर वज्र काम नहीं किया और वो गाज फेन काम किया और मारा गया। इंग्लिश में फोम कहते हैं, फेन का ही सोसाइब बना लिए हुए फोम, उससे मर गया। उसे तो कीड़ा भी नहीं मर सकता है मारने को, लेकिन उतना बड़ा असुर जो वज्र से नहीं मरा उससे मर गया। तम दैवीन गिरमा करण भगवान सुसमाहित ध्यान फेन मथा पशु। तो दैवी वाणी को सुनकर भगवान इंद्र कुछ देर चिंतन की, कौन ऐसी वस्तु है जो सुखी भी नहीं है और गीली भी नहीं है, सुखी भी है गीली भी है। फेन को उन्होंने उभयात्मक देखा, ये गीला भी नहीं है सूखा भी नहीं है, और गीला भी है और सूखा भी है, ये उन्होंने उभयात्मक देखा। देखिए इसी से ईश्वर के भरोसे पर काम करना चाहिए। भगवान की कृपा से कभी कभी असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। सर्वदा ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। अपने प्रयास विफल हो जाए, काम न करे, फिर भी भगवान की कृपा काम करती है सब जगह। यदि कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र चलाते चलाते जीवन बीत जाता इंद्र का, फिर भी वो मरने वाला नहीं था, लेकिन फेन से मार दिया गया, मर।
न शुष्केण न चाद्रेण जहार नमुचे शिरः तंतुष्टुर मुनिगणा माल्येश्चावा किरण विभुम।
जब भगवान इंद्र ने फेन को मारा, उसके फेंका उसके गर्दन पर, तो उसका गर्दन कट करके अलग हो गया उससे कोमल फेन से। इसके बाद गंधर्व मुख्य लगे गाने, जिसमें विश्वावसु और परावसु प्रधान थे। देवता देव दुंदुभियां बजने लगी, स्वर की अप्सराएं नाचने लगी। इंद्र के जो प्रतिद्वंदी थे सब मारे गए। अब निश्चित हो गया कि यह युद्ध इंद्र के हाथ में आ गया, मतलब उसका जो विजय फल था वो अब आ चुका है। जब वायुदेव और अग्निदेव इत्यादि ये देवता जब देखे कि इंद्र अपने प्रतिद्वंदियों को मार दिए, वे लोग भी पूरी ताकत लगा करके अपने प्रतिद्वंदियों को मारना प्रारंभ किए। बहुत से लोगों का वध किए। अन्य पेवम प्रतिद्वंदान वाय अग्नि वरुणादय सुदयामासुरसुरान मृगान केसरिण वजथा। तो अन्य देवता अपने प्रतिद्वंदियों को, प्रतिजोधियों को इस तरह मार रहे थे जैसे सिंह मृगों को, हरिणों को मारे युद्ध में। हरिण का उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि बहुत तेज गति से हरिण भागते हैं, परंतु सिंह उन्हें पकड़ करके मार देते हैं। तो ये सब असुर अब भागना चालू किए थे प्रधान प्रधान लोगों के मरने से, लेकिन अब देवता भागने के बाद भी इनको छोड़े नहीं, मारते गए, जैसे सिंह खदेड़ खदेड़ करके मारता है वैसे वैसे मार। और जब सब घेर करके चारों तरफ से मार रहे थे देवता लोग, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा।
ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षि नारदो नृप वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानव संक्षयम्।
दानवों का लगभग संक्षय हो चुका था, अब कुछ ही बचे थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने भेजा कि दानवों का कुछ बीज रह जाना चाहिए ब्रह्मांड में। वे सृष्टि करता है, भले खराब लोग हैं लेकिन क्या करें, कुछ तो सृष्टि रहनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी भेजे नारद जी को, नारद जी आकर के देवताओं को मना कर दिए, युद्ध मत करो। श्री नारद वाच, नारद जी ने क्या कहा देवताओं से,
भवद भीर अमृतम प्राप्तम नारायण भुजाश्रय ही,
भगवान नारायण की भुजाओं का आश्रय लेने से आप लोगों को अमृत मिल गया।
अच्छा, और श्रिया समेधिता सर्व उपर अमृत विग्रहत,
अब आप लोगों का धन बढ़ गया, आप लोग सफल हो गए, इस युद्ध में भी विजयी हुए, इसलिए अब विग्रह से उपरत हो जाइए, अब युद्ध मत कीजिए, छोड़ दीजिए युद्ध। यद्यपि देवताओं का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था उन लोगों के असुरों के अत्याचार से, लेकिन नारद जी की बात का उन्होंने आदर किया और कहा ठीक, सब प्रणाम किए नारद जी को, कहे ठीक है आपकी आज्ञा से हम युद्ध करते।
संयम्य मन्म संरंभम मानयन्तो मुनिर्वचः उपगीयमानानुचरैः जयो सर्वे त्रिविष्टतम्।
नारद जी की बात का उन्होंने आदर किया, अब ठीक है आप कहते हैं तो हम युद्ध बंद करते हैं। मानयन मुनिर्वचः, यह है देवता का गुण, साधु महात्मा की बात माननी चाहिए, अपना निर्बंध अपना आग्रह नहीं करना चाहिए। तो साधु कह रहा है कि युद्ध रोक दो तो रोक दो, नहीं तो दो जो दल विजयी होगा वो सोचेगा कि शत्रु का नामो निशान मिटा दिया जाए, नहीं तो ये रहेंगे तो फिर उपद्रव करेंगे। देवता इस विचार में था, पर फिर भी नारद जी के कहने से छोड़ दीजिए।
ये वशिष्टारणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते बलिम विपन्नम आदाय अष्टम गिरिमुपागमन।
तो उस युद्ध में जो अवशिष्ट थे, बचे थे, नहीं मरे थे, उन लोगों से नारद जी ने कहा अरे जो बचे हो अब युद्ध तुम लोग मत करो, ठीक है रुक जाओ, और जो लोग मरे हैं उनको टांग कर ले जाओ जिलाने के लिए अपने गुरु के पास, शुक्राचार्य के पास ले जाओ। तो कुछ तो बचे थे और मरे हुए को भी जिलाने की योजना बन गई। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि कह देना कि और लोगों को ले जाकर के जिला ले। सृष्टि में दैत और दान देवता हमेशा रहेंगे, इस संसार में जीवों का स्वभाव होता है कि एक गुट का व्यक्ति चाहता है कि हमारा प्रतिद्वंदी इस पृथ्वी पर न रहे, देवता चाहते हैं कि दैत न रहे, दैत चाहते हैं कि देवता न रहे, लेकिन भगवान की ऐसी सृष्टि है कि यहां सब जीव रहेंगे। अरे मरे थे तो बहुत खुशी की बात थी, लेकिन उनको जिलाने के लिए नारद जी ने कहा कि ले जाओ जिला उनको। और स्पेशली उन्होंने बलि महाराज के लिए कहा कि बलि महाराज को जल्दी उठाकर ले जाओ, ये जी जाएंगे। इतना जब असुरों ने सुना तो वे लोग साज करके और एम्बुलेंस मंगाए और सब लाद करके लेकर के चले। जब लेकर के भागे शुक्राचार्य के पास, वो एम्बुलेंस विमान से जा रहे थे, धरती पर नहीं जा रहे थे, ले गए।
तत्रा विनष्टा वयवान विद्यमान शिरोधरान उष्णा जीवयामा स संजीवन्यासो विद्या।
शुक्राचार्य संजीवनी विद्या में एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या से उन समस्त असुरों को जीवित कर दिया जिनके शिरोधर विद्यमान थे, जिनका मस्तक लगा हुआ था,
और हाथ पैर बचे हुए थे। इसका अर्थ है कि जिनके हाथ पैर कट चुके थे, सिर कट चुके थे, ऐसे फालतू असुरों को उन्होंने जीवित नहीं किया, जिनके हाथ पैर लगे हुए थे मर गए थे उनको जीवित कर दिया। और मस्तक था स्वविद्या, यहां स्वविद्या का अर्थ है कि संसार में यह विद्या केवल शुक्राचार्य जानते हैं और लोग नहीं जानते, ये विशेषता है शुक्राचार्य। मृत संजीवनी विद्या केवल शुक्राचार्य जानते हैं, इसलिए स्वविद्या कहा गया, अपनी विद्या। यहां तक कि देवगुरु बृहस्पति जी भी नहीं जानते। वैसे शुक्राचार्य तो मस्तक कट जाने के बाद भी जोड़ देते हैं, जिला देते हैं। स्वर्ग में अश्विनी कुमार भी ऐसी विद्या जानते हैं, वो कटा हुआ मस्तक जिला जोड़ दिए दधीची मुनि को। पर शुक्राचार्य के पास तो यह विद्या बहुत बृहद रूप में है और इनका कार्य ही है मरे हुए को जिला देना। वहां सब लोग गए, सबको जिला दिया, अंत में बलिश्चोषण सा अस्पृष्ट प्रत्यापनेन्द्रिय स्मृति ही। बलि महाराज को तो उन्होंने केवल छुआ, ऐसे छू करके सिर पैर हाथ वगैरह और मंत्र पढ़े, बस बैठ गए उठकर। उनके छाती पर लगा था वज्र, लेकिन शरीर में कोई खरोच नहीं लगी थी, मर गए थे। पर उनको स्पृष्ट, स्पृष्ट का अर्थ है कि छुए, और लोगों को छुए नहीं शुक्राचार्य, जिससे सिद्ध होता है। ऐसे दूर से ही जल फेंक कर मंत्र पढ़ करके जीवित कर दिए थे, लेकिन बलि महाराज को बड़ी ममता से अपने हाथों से स्पर्श करके और मंत्र पढ़ करके जीवित कर दिए। तो प्रत्यापनेन्द्रिय स्मृति, बलि महाराज पूर्व की तरह ही बिल्कुल स्मृति और इंद्रियां प्राप्त कर लिए। अब उनकी आंखें काम करने लगी, कान सुनने लगा, हाथ पैर सब काम करने लगा, और स्मृति भी प्राप्त हुई कि मैं बलि हूं और इस प्रकार युद्ध में इंद्र के द्वारा मारा गया था, तो उनको कोई दुख नहीं हुआ। इतने असुर मारे गए और समुद्र मंथन करने पर अमृत भी नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी हुआ, इनको कोई शोक नहीं था। देखिए सुखदेव गोस्वामी कहते, पराजितो अपि ना खिद्यत लोक तत्व विचक्षण। पराजित अपि, युद्ध में पराजित होने पर भी न अखिद्यत, खेद नहीं किए, विषाद नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि लोक तत्व विचक्षण, लोक तत्व के ज्ञाता थे, विद्वत्, जानते थे कि इस संसार में कुछ भी हो सकता है, किसी जीव का कभी भी जन्म मरण विजय पराजय सब चलता ही रहता है, कोई चिंता की बात नहीं, दुखी नहीं है। यही है महापुरुषत्व। बलि महाराज प्रारंभ से ही बहुत महान पुरुष थे, कोई चिंता नहीं। अब यह कथा कहकर श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान शिव की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री हरि ने विचार किया कि मेरे मोहिनी रूप से असुर मोह गए तो ये क्या मेरा चमत्कार, यदि शिव को नहीं नचा दिया इस रूप पर तो तेरी महिमा ही क्या रहता। भगवान ने सोचा, नटराज को यदि नहीं नचा दिया तो क्या मेरी महिमा रही। इस संसार में सबसे बड़े जितेंद्रिय भगवान शिव हैं, बताइए। कामदेव जिनके नेत्र की ज्वाला से जलकर राख हो गया था, तो उसमें काम वासना कैसे आ सकती है। बहुत बड़ा जस है भगवान शिव का, लेकिन भगवान ने सोचा कि ऐसे योगी को, जितेंद्रिय को भी मैं अपने मोहिनी रूप से जब बिहवल कर दूंगा, नचा दूंगा, तब लोग मेरी महिमा समझेंगे इस संसार में कि भगवान भगवान है और लोग और लोग। इसलिए उन्होंने प्रेरित किया, तो परमात्मा है ही सबके हृदय में। शिव जी के मन में हुआ कि मैं भी भगवान का वो रूप देखूं। इधर मोहिनी प्रकट हुई थी, अमृत बांटा गया, क्या क्या हुआ। शिव जी इस साइड पर आए नहीं थे, वो लोग भगवान का भजन करते हैं, सोच रहे चल रहा है उधर चल रहा है, वो नहीं आए थे। एक वर्णन है कि तब भगवान के ऊपर इंद्र, ब्रह्म और अंगिरा वर्षा कर रहे थे, शिव जी क्यों नहीं आए थे। नहीं, ब्रह्म रुद्र अंगिरा आए थे शिव जी, भगवान के ऊपर फूल की वर्षा करने आए थे जब समुद्र मंथन चल रहा था। लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि जब अमृत उत्पन्न हो गया और असुर लेकर भाग चले तो शिव जी गए भजन करने के लिए, छोड़ो जैसे होना है, जो भगवान को करना होगा करेंगे, हम सब मंथन ठप हो गया था, अस्त हो गया था, तो वो चले गए। तो अमृत बांटा जा रहा था तो भगवान शिव पीने नहीं आए, वो इतने भिखमंगे नहीं है कि सब अमृत पिया करे, वो महादानी जगत को क्यों अमृत पीना चाहे, जमात लेकर के चले और अपनी पत्नी को भी लेकर चले। वहां जाने के बाद भगवान ने बहुत सुंदर स्वागत किया, क्योंकि वैकुंठ में कोई चीज की कमी नहीं, एक एक भूत को एक एक फ्लैट दिया भगवान ने रहने के लिए, आराम से स्वागत किया गया। भूत प्रेत लोग देखने में बड़े बेढंगे थे, लेकिन भगवान तो भगवान है, सबके पिता हैं, और चूंकि वे शिव जी के पार्षद थे इस नाते से बहुत सुंदर स्वागत किया गया। वो तो धन्य हो गए वैकुंठ में पहुंच करके, और इसके बाद जो वे देखेंगे वो तो देखेंगे। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वृषभ ध्वजो निसंवेदम जोषित रूपेण दानवान मोहयित्वा सुरगणान हरिः सोमम पायत वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः सह देव्या जजो द्रष्टुम जत्रास्ते मधुसूदन। जहां मधुसूदन रहते हैं वहां शिव जी पहुंचे, सर्वभूत गणैर्वृत और देव्या सह, सती जी के साथ चले, पार्वती के साथ चले। इसी तरह चलना चाहिए, वास्तव में भगवान का दर्शन करना हो तो पूरा परिवार लेकर जाना चाहिए। जगन्नाथ जी का दर्शन करना हो तो सारा बच्चा स्त्री जो भी है चलो, थोड़ी सी दिक्कत ही होगी तो क्या करेगी, भगवान का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। शिव जी ने सोचा कि हम ये लाभ लेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे तो ये बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे, सबको दर्शन करना चाहिए। सभाजितो भगवता सादरम सोमया भव। तो भगवान ने स्वागत किया, बहुत सत्कार किया, भगवान तो सज्जनों में शिरोमणि, अतिथि का और वैष्णव का कैसे स्वागत करना चाहिए तो विष्णु ही जानते हैं, कंप्लीट जानते हैं। जिनके घर में श्री जी रहती है वहां वस्तु की क्या कमी है, जो जो आइटम खाना चाहे जैसे प्रसन्न रहे वहां सब कुछ उपस्थित था। जो भूत प्रेत कभी वैसा बेड देखे नहीं होंगे, वैसा भोजन देखे नहीं होंगे, वो सब मिला। वहां तो कैलाश में तो कुछ है नहीं, पर्वत में रहते हैं इधर उधर, और जो मालिक ही श्मशान में रहते हैं तो अब वो लोग क्या घर में रहेंगे। लेकिन वैकुंठ में तो सारी भूमि चिंता मड़ी है, चिन्मय पत्थर लगे हैं, वृक्ष पार्षद सब, और भगवान के पार्षद बड़े कुशल हैं, बड़े प्रेमी हैं, वे लोग भगवान शिव के गणों का स्वागत करने लगे अच्छी तरह से। अतिथि देवता होता है, अतिथि देवो भव, देवता होता है, तो देव माने भगवान, अतिथि देवो भव का अर्थ है अतिथि भगवान है, उसका स्वागत करना चाहिए। एक बार एक भक्त कह रहा था कि अब अतिथि देवो भव हो गए, हे अतिथि देव देव। अब गेस्ट हाउस बनाते हैं लोग, गेस्ट आएंगे ठहरेंगे, उनसे लेना चाहिए 10 रुपया तो लेते हैं 100 रुपया, अब अतिथि देवो भव हो गए, देने वाले हो गए। हे अतिथि आओ सब ओर से और हमको दिया करो। अब तो सब पवित्रता मिट गई, धर्मशाला गेस्ट हाउस सब कमाने के लिए बनाए गए, कमाई बहुत बड़ी हो गई। पहले अतिथियों का स्वागत फ्री होता था, प्रेम से होता। तो भूतों का ये कोटि कोटि समाज अगर किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाए, वो बेचारा गरीब क्या करेगा, लेकिन भगवान इतना समृद्ध है कि सबकी व्यवस्था करने में उनको तो कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ा। सुकविष्ट वाचदम प्रति पूज्य स्मयन हरिम भगवान शिव बैठे इसके बाद भगवान विष्णु के साथ सारे स्वागत के बाद बैठे तो भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे कि हमने मन में सोच रहे थे कैसी कहूं क्या कहूं, अब तक मैंने नहीं देखा था कि भगवान स्त्री भी है, उधर पुरुष रूप में देखा था। तो मुस्कुरा रहे थे और भगवान ने कहा कि कैसे कृपा किए, कैसे चरण कमल पधारा, आपका आपको देख करके आपका स्वागत करके मैं धन्य हो गया, लेकिन आप अवश्य किसी अभिप्राय से आए हैं क्योंकि इतना बड़ा समाज लेकर आए हैं तो कोई ना कोई अभिप्राय, तो यदि आपका अभिप्राय पूरा करूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मुझे अवसर दीजिए सेवा का। तो भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि यदि सीधा यह कह दूंगा कि हम आपका मोहिनी रूप देखने आए हैं तो भगवान शायद न दिखा, इसलिए भगवान के गुण गाना उन्होंने चालू किया, बहुत लंबी स्तुति किया। देव देव जगद व्यापिन जगदीश जगन्मय सर्वेशाम अपि भावानाम त्वमात्मा हे तुरीश्वरः, भगवान के यथार्थ गुण गाने लगे। श्रीजी आठ श्लोकों में यह गुण है जिसकी व्याख्या तो आज पूरी नहीं होगी, कल सवेरे के सीटिंग में ये व्याख्या पूरी की जाएगी, क्योंकि भगवान का गुणानुवाद करना ही भागवत का उद्देश्य है। अब भगवान शिव के मुख से भगवान के दिव्य गुण आएंगे तो कल ही हम इसको ठीक से व्यक्त करेंगे भक्तों के बीच, और शाम के समय भगवान इनको मोहिनी रूप दिखाएंगे, कल शाम के सिटिंग में। वैकुंठ में कुछ देर तक रहे तो ठीक ही है, तो आज रात भर रहने दीजिए शिव जी को वैकुंठ में, कल मोहिनी रूप देखेंगे। हरे कृष्णा। तो आज हमारे गुरु भाई श्रीपद भक्ति स्वरूप दामोदर जी का जन्मदिन है, वो हमारे इस्कान के एक बहुत ही वरिष्ठ और प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य रहे हैं, तो उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ, स्वस्थ जीवन की। उनके इस जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई है और उनके शिष्यों को धन्यवाद है। हरे कृष्णा।